जय माँ। जीवन में कठिनाइयाँ हैं और कठिनाइयों का अगर विधान जो है उसके पीछे हम जाके देखें कि कठिनाइयाँ क्यों हैं, तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि वो क्योंकि ये प्रगतिशील जगत है। जब तुम एक जगह जम जाती हो, एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो कठिनाई नहीं होती है लेकिन प्रगति भी नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, कंफर्ट ढूंढते हैं, वो प्रगति नहीं कर पाते, बिकॉज वो एक जगह जम के बैठना चाहते हैं। पर जैसे ही आप बढ़ना चाहोगे तो आपको आगे की ओर कदम लेना है। आगे की ओर कदम लेना है तो पीछे से जिन चीज़ों से आप जुड़े थे वो छूटेंगी, पीछे रहेंगी, तो उससे तकलीफ होती है। तो कठिनाइयाँ हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि बाहर से कठिनाई आई, लेकिन एक योग संबंधी जब दृष्टि होती है तो हम अंदर ही कठिनाई देखते हैं, दूसरे के अंदर नहीं, हमारे अंदर की कठिनाई देखते हैं। दूसरे के अंदर देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि कठिनाई आती है तो हम कैसे उसको फेस करें। जीवन है, उसमें आएंगी और हम सबके विकास के लिए आएंगी। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कठिनाई ना हो और जिसके जीवन में कठिनाई ना आती हो। तो समग्र जीवन योग है, यही हम लोगों की मुख्य थीम है। श्री माँ का योग जीवन से जुड़ता हुआ बहता चला जाता है, ये एक अलग से केवल ध्यान करने का योग नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, हम लोग वॉल्यूम 8 में हैं, शायद आज उसके मुख्य अंश समाप्त हों। तो माताजी से किसी ने प्रश्न किया है, माँ का एक वाक्य है, महावाक्य है, When you are in difficulty, widen yourself. तो किसी ने प्रश्न किया है, What do you mean by these words? यानी तुम जब कठिनाई तुम्हारे सामने हो, फेस कर रहे हो कठिनाई, सामने का मतलब ही नहीं बाहर हो, तुम उसको अनुभव कर रहे हो अपने अंदर, तो तुम्हें अपने को विशालता की ओर ले जाना है। तो माता जी से किसी ने प्रश्न किया, ये क्या इसका अर्थ है और हम कैसे करें? तो माँ कहती हैं कि आई एम स्पीकिंग ऑफ कोर्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑन द पाथ ऑफ योगा, इनकॉम्प्रिहेंशन, लिमिटेशंस, थिंग्स लाइक ऑब्स्टेकल्स विच प्रिवेंट यू फ्रॉम एडवांसिंग, एंड व्हेन आई से वाइडन योर सेल्फ आई मीन वाइडन योर कॉन्शियसनेस। तो अब हमारी चेतना विशाल होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं विशाल होती है? उसका मुख्य कारण होता है ईगो। तो सारी समस्या की जो जड़ है वह हमारी ईगो, बार बार ये हमारी शब्द ऐड करना होता है, किसी और की ईगो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। किसी और की ईगो से आपको चोट पहुंच सकती है पर उससे कोई लाभ नहीं है उसको देखने का। हमारे अंदर जो ईगो है वो हमको इनकॉम्प्रिहेंशन भी लाता है, लिमिटेशन भी लाता है, कठिनाइयाँ भी लाता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि ईगो से इनकॉम्प्रिहेंशन का क्या लेना देना। इनकॉम्प्रिहेंशन है मतलब चीज़ों को नहीं समझ पाना। तो यदि हम एक छोटी सी चीज़ लें, इवन शेयरविंद को समझने के लिए, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि हमारी ईगो ने, एक माइंड ने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। माता जी एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहती हैं, जिसको जब मैंने पढ़ा था तो एक कहते ना कि एक जोर का झटका लगता है लेकिन हल्के से लगता है, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था बहुत पहले। माँ एक जगह कहती हैं ये सब मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरी छवि को प्यार करते हैं। तो अब आपका दिमाग क्या होता है कि उस समय छवि से केवल उनके फॉर्म को देखता है। तो एक सेकंड को मैंने कहा कि माँ क्या कह रही हैं, मतलब कोई, और कई लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मतलब वो जो इनर मदर हैं, जो सुप्रीम, नहीं, माँ ये नहीं कह रही हैं, क्योंकि वो तो शेरविंद ने स्पष्ट कर दिया है कि इन यही नाम रूप है जिसने धारण किया उस संपूर्ण सत्य को। तो छवि क्या होती है, हम सब अपने मन में हमारी ईगो छवि बनाती है और छवियों से वो खेलती है, व्यक्तियों के बारे में भी छवि बनाती है। बात हो रही थी कि भाई हमने आपको भगवान के समान रख दिया, तो एक तो आपको रखना नहीं चाहिए तो दूसरा है, भगवान के समान नहीं रखा, आपने अपने मन में एक छवि है भगवान की, उसको आपने ट्रांसपोज किया। क्योंकि अगर भगवान को भी आप रखोगे भगवान की जगह पर, आपने अपनी छवि उन पर इम्पोज की हुई है, तो आप परेशान हो जाओगे। तो श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण तो पूर्ण है लेकिन कुरुक्षेत्र भी श्री कृष्ण का एक सत्य है और धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सब तो बड़े परेशान होते हैं कि ये कैसे भगवान है, क्योंकि वो छवि आपकी कि भगवान है, युद्ध नहीं करेंगे, ये नहीं, पर श्री कृष्ण तो महाविनाश करते हैं, माता जी तो डपट भी देती थी कुछ भी, तो ये हम, हमारी छवि होती है हर चीज़ की, वो ईगो हमेशा छवि से खेलता है, तो वो सत्य से नहीं खेलता है। एक अपने बारे में छवि बनाता है, अपनी छवि तो बहुत अच्छी होती है, और एक छवि दूसरों के बारे में बनाता है, एक छवि संसार के बारे में बनाता है, एक छवि भगवान के बारे में बनाता है, नन ऑफ देम इज ट्रू, तो वो लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि अब आप जो भी समझोगे, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, उसमें फिट करने का प्रयास कर रहे हो, कि शेयरविंद को आपने पढ़ा तो अब आप ढूंढ रहे हो कि क्या मेथड बताएंगे, क्योंकि आपने एक छवि बनाई है कि योगी और योगी के साथ ध्यानस्थ अवस्था, ध्यान मतलब आंख मूंद करके ऐसे बैठना। अभी एक दिन में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सुंदर एक वीडियो बना है इस मंत्र पर, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी पर में संगीत है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक आप देखेंगे उसमें कि एक इमेज आती है जब ओम की बात होती है, और वो इमेज है एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, एक सिलट है ना, दिस इज अवर छवि। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हो लेकिन योग ना कर रहा हो, और एक व्यक्ति जो जीवन जी रहा है हर चीज में वो योगनिष्ठ हो, तो ये छवियां माइंड के अंदर, जिसको बुद्ध ने तोड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण लोग उनको नहीं समझ पाए, तो ये लिमिटेशन के कारण इनकॉम्प्रिहेंशन होता है, हम समझ नहीं पाते कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, हम उनको फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, माता जी को फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको एकदम खुलना होगा, इसको माँ कहती है वाइडनिंग, विशालता में। अब क्या हुआ, आपकी छवि जो ईगो की लिमिटेशन है उससे आप बाहर निकले, तो बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, माँ यहां बता रही हैं, डिफिकल्टीज ऑलवेज अराइज फ्रॉम द ईगो, मतलब यदि मैं पीड़ित हूं तो प्रॉब्लम मेरी है, जब तक हम ऐसे नहीं देखते हैं तब तक हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है आपका छोटा हिस्सा हो, बड़ा हिस्सा हो, एक अलग बात है, पर अगर आप उस कंटक को हटा देते हैं अपने अंदर से, जो आपके अंदर ईगो के कारण हो रही है, तो आप इंस्टेंटली क्लियर हो जाएंगे। जैसे उस दिन बात हो रही थी, कई बार ये बातें होती हैं अलग अलग ढंग से, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुमने किसी को, कई बार लोग अब बहुत पीड़ा में अपने आप को डाल देते हैं, तो तुमने गलत किया क्या, अगर तुमने गलत किया तो तुमको उसको करेक्ट करना चाहिए अपने स्तर पर अंदर। माँ तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं के अंदर उसको करेक्ट करो, लेकिन ठीक है फिर भी। और अगर तुमने अपने अंदर की कठिनाई को पकड़ लिया और ठीक कर दिया, तो आप इंस्टेंटली जॉय में चले जाओगे, उसके बाद आप शांत रहोगे, आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। और अगर पीड़ा परसिस्ट कर रही है, मतलब मैंने अपने अंदर जो, मेरे अंदर जो समस्या है उसको मैंने नहीं पकड़ा है, तो प्रोलॉन्ग करेगी। तो माँ कह रही कि ईगो के कारण ही अराइज होती है, बाहर उसका कुछ भी कारण हो, मतलब बाहर तो एक इमीडिएट कॉज होता है, बीमारी हो गई तो आपको कष्ट हो रहा है, कोई और चीज़ हो रही है, अभी कई बार है लोग जाते हैं डॉक्टर के पास परेशान होते हैं, अगर वो कन्फ्रंट करें तो डर किस चीज़ का हो रहा है, भय किस चीज़ का हो रहा है, उनको भय यही हो रहा है या तो मृत्यु का या कोई इनकैपेसिटी का, आप उस भय को कन्फ्रंट करो, भय क्या है, वो ईगो के सिकुड़न के कारण है। तो माँ कह रही हैं डिफिकल्टीज ऑलवेज अराइज फ्रॉम द ईगो, ईगो हमको सिकोड़ देती है और वो बहुत सीमित कर देती है, संकुचित कर देती है। इसलिए उपनिषदों में, ईश उपनिषद में एक शब्द यूज़ किया गया है, उसमें दोनों चीज़ों का वो है कि जिसने आत्म तत्व को पा लिया उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भय समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है, उसके अंदर किसी चीज़ से जुगुप्सा नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ से भागने की या हटने की या छोड़ने की चेष्टा कर रहे हो, मतलब देर इज़ ए प्रॉब्लम, आप उसको नहीं फेस कर पा रहे हो, तो यहाँ माँ बता रही हैं That is from your more or less egoistic personal reaction to circumstances, events and people around you to the conditions of your life. ये 29 अगस्त 1956 जो वॉल्यूम 8 हम पढ़ रहे हैं उसी में है कि जो बाहरी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, परिस्थितियाँ, circumstances आ रहे हैं, conditions आ रही हैं, अवस्थाएँ आ रही हैं, तुम उनको नहीं फेस कर पा रहे हो क्योंकि ईगो से रिएक्शन हो रहा है. तो ईगो से रिएक्शन हो रहा है तो उससे डिफिकल्टीज, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है. दे ऑल्सो कम फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ बींग क्लोज्ड अप इन ए सॉर्ट ऑफ शेल विच प्रिवेंट्स योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम लिमिटिंग, फ्रॉम यूनाइटिंग विद हायर एंड वास्टर रियालिटीज. तो तुमने अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया है. शेल वो कछुआ करता है ना, वो शेल में चला जाता है. तो अब वो तो ठीक है कि कछुआ बच जाता है, ईगो का पर्पस ही यही होता है. कई बाहर के आघातों से अज्ञान में हम ईगो के द्वारा अपने को बचाते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो उसको विस्तार में जाके बचाते हैं. ये अंतर है. जब हम अज्ञान में रहते हैं तो अहंकार का जो रिएक्शन होता है, कठिनाई है तो अपने को श्रिंक कर लेना, अपने को सीमित कर देना और संकुचित कर देना. और जब ज्ञान में हम प्रवेश करते हैं तो विस्तार में चले जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं, ऊंचाई की तरफ उठते हैं. वन मे वेरी वेल थिंक दैट वन वांट्स टू बी वास्ट, वांट्स टू बी यूनिवर्सल, दैट ऑल इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, दैट वन मस्ट हैव नो इगोइज्म. वन मे थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बट दैट इज नॉट नेसेसरली ए क्योर. तो हम सोच सकते हैं, सब सोचने से सोचना काफी नहीं है. फॉर वेरी ऑफन वन नोज वॉट वन ऑट टू डू एंड येट वन डजन डू इट फॉर वन रीजन और एनदर. सोच लेना, पढ़ लेना, जानना कि हाँ हमको विशाल होना चाहिए, इतना काफी नहीं है. हमको उसको अपने जीवन में लाना है, प्रयास में उतारना है. तो कैसे उतारेंगे, अब ये माँ समझा रही है. बट इफ When you have to face anguish, suffering, revolt, pain or a feeling of helplessness, हर लेवल पर anguish, एक तरह की आंतरिक पीड़ा, शुद्धता का भाव, suffering, पीड़ा, दुख, revolt, कई बार अपने अंदर एक क्रोध ये रूप ले लेता है. क्रोध और रिवोल्ट में अंतर क्या है, जब आप एक कमजोर व्यक्ति होता है तो आप क्रोध करते हो, और अगर आपसे पावरफुल व्यक्ति है तो आप रिवोल्ट करते हो, क्योंकि आप क्रोध नहीं जता सकते हो तो आप रिवोल्ट करते हो. और रिवोल्ट के कई माध्यम होते हैं कि हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, हम आपसे दूर चले जाएंगे. ये सारे रिवोल्ट के, माता जी के साथ कितने लोग की नहीं, हुता बहन के अंदर कितने बार होता था कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो वो रिवोल्ट होता है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे. या फिर एक दर्द के रूप में, या फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सारे इसके ईगो के रिएक्शंस हैं. वट एवर इट मे बी, ऑल द थिंग्स दैट कम टू यू ऑन द पाथ एंड विच प्रिसाइजली आर योर डिफिकल्टीज, इफ फिजिकली, दैट इज टू से इन योर बॉडी कॉन्शियसनेस, यू कैन हैव द फीलिंग ऑफ वाइडनिंग योर सेल्फ. अब माँ बता रही क्या करना चाहिए. तो माँ कह रही है कि भौतिक स्तर पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम करें बहुत अच्छा है, चेतना की अवस्था में करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन माँ एक और चीज बता रही है कि अगर हम अपने आप को भौतिक स्तर पे भी, भौतिक स्तर पे हम कैसे करेंगे, भौतिक स्तर पे हम कल्पना के माध्यम से करेंगे कि हमारा जो शरीर है ये खुलता चला जा रहा है. You can have the feeling of widening yourself. One could say of unfolding yourself. यही चीज़ें जो गांठें होती हैं. उस दिन हमारी बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे ग्रजेस की, एक बीमारी जो बड़ी कॉमन है, बड़ी भयानक है, डिटेक्ट भी नहीं होती, उसको कहते ग्रजाइटिस. और वो हमारे अंदर वो एक गांठ बन जाती है, किसी से भी हमारा क्रोध हुआ है या घृणा करने लगे हैं. अब वो गांठ ऐसी होती है, ये इसको ऑर्डिनरी रूप में नहीं लेना चाहिए, यही गांठें हैं जो बीमारी का रूप धारण करती हैं, यहाँ पर वहाँ पर शरीर के. वो जो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए स्मूथली, वो नहीं हो पाता है. अब वो एक गांठ बन गई है, और जितना आप उसको, ईगो उसको स्ट्रेंथन करेगी, जितना बार उसको याद करेगी, कई लोग हैं ना जो जीवन भर याद करते हैं कि अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, अरे उसने वैसा किया था, मतलब वो गांठ को आप स्ट्रेंथन करते जा रहे हो, और वही चीज़ बाद में रसौली का रूप ले लेती है. बिकॉज आपने उसको एक उस ऊर्जा को, वो जो सड़ रही है उसको आपने रिलीज़ नहीं किया, फ्लो नहीं करा, उसको अपने अंदर बांध करके रखा और बांधते रहे बांधते रहे, तो माँ ये बता रही कि उसकी जगह हमको अनफोल्ड करना है, खोल देना अपने आप को। किसके प्रति खोलना है? प्रकाश के प्रति। कितनी सुंदर चीज है, कितनी सरल है, कुछ नहीं करना, आ करके अपने लेट जाइए और लेट के कल्पना कीजिए कि पूरा शरीर खुलता चला जा रहा है, प्रकाश उन्मुख हो रहा है। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये। यू फील एज इट वेयर ऑल फोल्डेड अप, और ये एक्चुअल अनुभव है। आप कभी अपने आप को जब क्रोध आता है या अहंकार हर्ट होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखें कोई चीज अंदर सिकुड़ रही है, और चूंकि वो सिकुड़ जाती है वो ना प्रकाश को रिसीव कर पाती है ना आनंद को रिसीव कर पाती है, क्योंकि वो एकदम सीमित हो, वो एक होल में चली गई है। अब देखिए छिद्र जो होता है ग्राउंड में वो खुला है आकाश के प्रति, लेकिन प्रकाश नहीं जाता है उसमें। आप टॉर्च से भी डालेंगे ना प्रकाश, तो आप देखेंगे कि वो कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो छिद्र है। तो चेतना हमारी एक छिद्र में चली जाती है, और वहां पे छिद्रों के अंदर क्या है हम सब जानते हैं, सांप बिच्छू, उसके बाद अहंकार के अंदर ऐसे रिएक्शन आते हैं, वैसे थॉट्स आने लगते हैं, और आप अपने आप को मिजरेबल करते हो छिद्र में जाके। फोल्डेड अप, वन फोल्ड और अनदर लाइक ए पीस ऑफ क्लॉथ विच इज फोल्डेड एंड रीफोल्डेड एंड फोल्डेड अगेन। तो करना यही चाहिए, अपने आप को देखो कि तुमसे कोई भूल हुई है, उसको देखो समझो करेक्ट करो और अपने आप को पूरी तरह खोल दो। मनन करेंगे यदि हम, जिस चीज का मनन करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। अगर हम मनन करते हैं अपनी कठिनाई का, इसीलिए कि मेरे अंदर ये समस्या है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता है अपनी डिफिकल्टीज के ऊपर, तो उसकी जगह हमको खोल देना है। मां कितने सुंदर ढंग से बता रही हैं। So if you have this feeling that what is holding and strangling you and making you suffer or paralyzing your movement is like a too closely, too tightly folded piece of cloth, or like a parcel that is too well tied, too well packed, and that slowly, gradually you undo all the folds and stretch yourself out exactly as one unfolds. तो हमको एक कल्पना में कि हमारा शरीर धीरे धीरे खुलता जा रहा है, एक एक जगह गांठ जहां आपको पीड़ा हो रही है, मान लो हृदय के अंदर पीड़ा हो रही है तो हृदय खुलता चला जा रहा है, पेट के अंदर पीड़ा हो रही है, इसके लोकेशंस भी होते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखें कि पाँव से लेके ऊपर तक ये जहां जहां पीड़ा हो रही है वहां वहां पे वो आघात और आघात पहुंच रहा है जिसके कारण वो बंद हो रहे हैं। कई बार अनसीन आघात होते हैं, एडवर्स फोर्सेस एक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं कोई ओपनिंग छूट जाती है, तो आपको बार बार उसको खोलना है प्रकाश के प्रति। यू अंडू ऑल द फोल्ड्स एंड स्ट्रेच योरसेल्फ आउट एग्जैक्टली एज वन अनफोल्ड्स ए पीस ऑफ क्लॉथ और ए शीट ऑफ पेपर एंड स्प्रेड्स इट आउट फ्लैट एंड यू लाई फ्लैट एंड मेक योरसेल्फ वेरी वाइड एज वाइड एज पॉसिबल। तो माँ कह रही है कि लेट करके, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्सरसाइज, इसको कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक है जैसे लेट गए ऐसे शरीर को खोल रहे हैं, अब उसमें देखो कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो माइंड के अंदर बार बार एक प्रकार के थॉट चल रहे हैं, तो उसका आपने खोलना शुरू किया, मन की सारी परत खोल दी। फिर कहीं पर वो हर्ट हो रहा है, रो रहा है, तो उस भाग को आपने खोल दिया, शरीर को उसको आपने खोल दिया। तो Spreading yourself out as far as you can, opening yourself and stretching out in an attitude of complete passivity with what I could call the face to the light. इसमें एक इमेज अन्यत्र माँ ने दी हुई है, बड़ी हेल्पफुल है, की हुई है ये सारी चीजें एक समय मैंने, कि आप ओशियन पे विशाल होते जा रहे हो, धीरे धीरे जो वेव्स है ना ओशन की पालना बन जाती है। तो एक इमेज दे रहा हूँ मैं, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, बहुत अच्छी लगती थी, कि आप समुद्र पे लेटे हुए हो, पीठ समुद्र की ओर है, और जो पूरा चेहरा और ये आगे का भाग है खुला हुआ है सूर्य की ओर, और धीरे धीरे एक एक वेव के साथ आपके अंदर चीजें खुलती चली जा रही है, समुद्र जैसे आप विशाल बनते जा रहे हो। फिर मैं उसमें एक इमेज ऐड करता था कि ये समुद्र वास्तव में क्षीर सागर है, तो उसे बड़ा मजा आता था कि ये ओशन ऑफ लाइट है, और उस ओशन ऑफ लाइट में आप नहा रहे हो, आप अपने को विशाल करते जा रहे हैं और इतना विशाल हो रहे हैं कि पूरा एकदम समुद्र के समान विशाल हो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको 5 मिनट के अंदर संतुष्टि ना आ जाए, इट नीड जस्ट 5 मिनट्स, और कोई उसके लिए कोई गुरुजी नहीं चाहिए, कोई आपको $100 का कोर्स नहीं चाहिए, नथिंग। इसी चीज को वो $100 वाले कोर्स में भूमिका बांध के कराएंगे, अंत में यही कराएंगे, पर बहुत भूमिका रहेगी, बहुत इंटेलेक्चुअलाइजेशन रहेगा। आप $100 लिए हैं तो जस्टिफाई भी करना है, और फिर आपको अंत में यही चीज कराएंगे। इमेजरी, इसको कहा गया इमेजरी, माँ इमेजरी का, लेकिन चूंकि ये इमेजरी माँ दे रही हैं तो इस इमेजरी में उन्होंने अपनी शक्ति को ऐड कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो माँ कहती हैं ऐसे जितना तुम विशाल हो सकते हो, और फिर एन एटीट्यूड ऑफ कंप्लीट पैसिविटी विद व्हाट आई कुड कॉल द फेस टू द लाइट। अब माया ये नहीं कह रही कि मुझसे बोलते रहो मुझसे, अब कई बार क्या होता है ना, वो अच्छी बात है अगर आपको शेयर करना है, शेयर विद द मदर, लेकिन कभी कभी हम जब कॉन्स्टेंटली अपनी डिफिकल्टीज बताते रहते हैं तो हम वास्तव में उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, मदर बिकम्स एन एक्सक्यूज कि आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट द डिफिकल्टी। तो माँ कहती है इंस्टेंट जैसे अनफोल्ड योर सेल्फ, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, नॉट कर्लिंग बैक अपॉन योर डिफिकल्टी, ये माँ बता रही हैं, डबलिंग अप टू इट, शटिंग इट इन सो टू से इन टू योर सेल्फ, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अनफर्लिंग योर सेल्फ एज मच एज यू कैन, as perfectly as you can, putting the difficulty before the light which comes from above. तो हम कर सकते हैं, भाव होना चाहिए कि माता जी का प्रकाश चारों तरफ। एक जगह माँ कहती हैं कि तुम सोते समय भी ये कर सकते हो, फिर माँ कहती है तुम एक समुद्र के ऊपर ऐसे अपने आप फ्लोट कर रहे हो और मेरे वाइट कोकून में लिपटे हुए हो, और एक वाटर लिली की तरह उसके ऊपर तुम हिचकोले खा के फ्लोट कर रहे हो। कितनी सुंदर इमेज है। तो जब भी डिफिकल्टी आए तो ये हम कर सकते हैं। द लाइट विच कम्स फ्रॉम अबव, इफ यू डू दैट इन ऑल द डोमेन्स, तो यहां पे बात हुई कि मन हृदय सभी कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड इवन इफ मेंटली यू डोंट सक्सीड इन डूइंग इट, for it is sometimes difficult, if you can imagine yourself doing this physically, mind se bhi kiya ja sakta, lekin mind mein chetna ko aapko vistar, you have to feel that consciousness. To maa kehti kam se kam tum imagine kar sakte ho sharir ko ka khulna, physically almost materially, well when you have finished unfolding yourself and stretching yourself out, you will find that more than 3/4 of the difficulty is gone. इसको मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ कि जब भी मैंने किया है, 3/4 नहीं 100% एक्चुअली, वो थोड़ा कुछ बचता भी होगा तो पता नहीं चलता है, वो चला जाता है। इट जस्ट दैट वन हैज टू डू इट। माँ आपको पोर कर रही हैं रेन्स ऑफ हर ग्रेस, जो क्लीन कर रही है सब कुछ, उनका प्रकाश, बस इतना ही करना है। एंड देन जस्ट अ लिटिल वर्क ऑफ रिसेप्टिविटी टू द लाइट एंड द लास्ट क्वार्टर विल डिसअपियर। दिस इज मच इजियर देन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ डिफिकल्टी विद वन्स थॉट। तो कई बार लोग एनालाइज करते हैं बहुत। अब एनालाइज करने की समस्या क्या है कि आपने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, आप उसी के चारों तरफ एनालाइज कर रहे हो। वाइडनिंग का मतलब आप ईगो के दायरे से बाहर निकले, वो समस्या होती है। तो लोग ईगो को ही केंद्र में रख के एनालाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग करते हैं कई बार कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया। पहले तो ये प्रश्न ही गलत है, उसने आपके साथ कुछ नहीं किया, ये आपने ऐसे प्रतिक्रिया क्यों की, ये आपको बस देखना है। तो वो जो जब हम एनालाइज करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू एनालाइज, तो हम इक्विप नहीं है उसके लिए, जो प्ले ऑफ फोर्सेज है उसको समझने के लिए। वास्तव में ये प्ले ऑफ फोर्सेज होते हैं जिनको हम सकम करते हैं, जिसमें आप ना खुद को ब्लेम करते हो ना किसी और को, बस ये देखते हो कि मेरी ट्यूनिंग गलत हो गई, मैंने इस फोर्स को अपने अंदर आने दिया, एंड आई शुड बी मोर कॉन्शियस विजिलेंट, माता जी को ऑफर कर देते हैं। परंतु उसके बजाय हम माइंड को थॉट से उसको समझने की और दूर हटाने की चेष्टा करते हैं, और थॉट तो फिर एक बार उसमें उलझता है तो ग्रामोफोन की सुई की तरह चलता है। जैसे जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं और दुख भरे गाने सुनने का उनको पता नहीं क्यों शौक होता है, अब शौक होता है तो वो दुख भरे गाने आपके दुख को मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर है, आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ही दुखी हो और वो उधर गाना आ रहा है, मेरा सुंदर सपना टूट गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना रूठ गया। अब ये दिस इज नॉट दी अप्रोच, क्योंकि अप्रोच ये होनी चाहिए कि थॉट में भी कि ओके आई गिव माई सेल्फ एंटायरली टू द डिवाइन, सब जग जल हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं हम। तो थॉट से माँ कह रही है दिस इज मच ईजियर देन स्ट्रगलिंग विद वंस थॉट, फॉर इफ यू बिगिन टू डिस्कस विद योर सेल्फ यू विल फाइंड दैट देर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट विच आर सो कन्विंसिंग दैट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट विदाउट ए हायर लाइट। ये मानव मन की ये अद्भुत कैपेसिटी है कि वो अपने को सतत जस्टिफाई करता है, और चूंकि वो सतत जस्टिफाई करता है वो आर्ग्यूमेंट डिस्कशन से बाहर नहीं निकल पाता है। आप कितना भी उसको प्रमाण दे दो, कितना भी समझा दो, पर वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने ये ठान ली है कि ईगो को सेंटर में रख के मैं चीज़ों को देखूंगा। तो ये एक उपाय माँ बता रही हैं, हियर यू डू नॉट स्ट्रगल अगेंस्ट द डिफिकल्टी, यू डू नॉट ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, you simply stretch out in the light as though you lay stretched on the sands in the sun and you let the light do its work, that's all। ये पता नहीं किसी ने कोशिश की है कि नहीं, ये बहुत ही this meditation जो खुली आंख से अगर आप कभी समुद्र तट पे लेट गए और आप केवल आकाश को देख रहे हो, ये बहुत डिसोरिएंटिंग हो सकता है, क्योंकि वो इतना विशाल वो भाव होता है ना, यू कैन एक्चुअली एंटर इनटू द वाइडनेस ऑफ द सेल्फ एंड इट कैन बी वेरी डिसोरिएंटिंग, क्योंकि अब आप आइडेंटिफाई की, नॉर्मली हमारी इंद्रिय आइडेंटिफाइड होती हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो जो चीज़ें सामने हैं ऑटोमेटिकली माइंड उससे आइडेंटिफाई कर रहा है। जब आपके सामने एक शून्य, मैं सुबह के समय की बात कर रहा हूँ, ये किया हुआ है मैंने और देखा है कि ये बहुत ही ऑलमोस्ट आपको फियर ला सकता है अंदर, मैं किसी को जानता हूँ, क्योंकि आप अचानक जैसे आप हो ही नहीं, आप आकाश को देखते हुए समुद्र के सीशोर पे लेट के आपका बस ऊपर देख रहे हो। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो कहते थे मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं सेल्फ की यूनिवर्सैलिटी में प्रवेश कर गया हूँ। वेल, सेल्फ की यूनिवर्सैलिटी तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से चेतना बहुत विशाल हो जाती है। तो यहाँ माँ दूसरा उपाय अगेन बताती हैं, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, व्हाट इज द इजिएस्ट वे ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ। जितना हम स्वयं को, माइक जय कहती है मिजरी का एक ही कारण है खुद के बारे में सोचना। इसीलिए कई बार जब लोग बीमारी में बिस्तर पे पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत थी और तो मैं देखता हूं यहां पे कि बिस्तर नहीं पकड़ना। बिस्तर आपने पकड़ लिया तो आप और क्षीण होते चले जाओगे। एक्चुअली ये देखा गया है कि आप अगर बिस्तर पकड़ लेते हो तो बॉडी के अंदर जो तामसिक शक्तियां हैं जो आपके बॉडी को डिजेनरेशन की तरफ ले जाती हैं वो सुपर एक्टिव हो जाती हैं। इसको बोन लॉस शुरू हो जाएगा, मसल लॉस शुरू हो जाएगा। शरीर के अंदर जो सिस्टम है वो ये मान लेता है कि अच्छा इस व्यक्ति तो आप अपने प्राण त्याग रहा है, ये सवासन नहीं कर रहा है, ये तो शव बनने की दिशा में जा रहा है, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। अनलेस ऑफकोर्स कोई ऐसी बीमारी होगी जब आप नहीं कुछ कर पा रहे। तो बेसिकली जब आप ये एटीट्यूड ले लेते हो तो समस्या होती है। तो माँ कहती हैं कि स्वयं को भूलना ये भी एक उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। नेचुरली दैट डिपेंड्स ऑन ईच वन, एवरी वन हैज़ ए स्पेशल वे ऑफ फॉरगेटिंग हिमसेल्फ विच इज़ द बेस्ट फॉर हिम। But obviously there is a fairly general method which may be applied in various forms. और वो मेथड क्या है? To occupy oneself with something else. आश्रम में इसीलिए 7 दिन काम है. अब आप जाओगे काम में बिजी रहोगे, छुट्टी नहीं है. नहीं, आप ले सकते हो छुट्टी, वो एक अलग बात है. कोई कंपल्शन नहीं है, बाहर बाध्यता नहीं है. लेकिन वर्क इज वन थिंग जो अपने आप आपकी ऊर्जाओं को वॉश आउट कर देता है. आप देखिए कभी आपकी बहुत खराब लग रहा हो, आप काम पे गए तो आपको प्रारंभ में वो लग रहा हो, अनमना सा लग रहा है. धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हो तो आपकी चेतना बहिर्गामी हो जाती है. अब क्या होता है कि वो जब चेतना बाहर की ओर दौड़ती है तो आपके अंदर की भी कई चीज़ें बाहर चली जाती हैं. जब वो चली जाती हैं तो अंदर कुछ खुल जाता है कुछ और आने के लिए. तो वो एक प्रकार का कॉन्स्टेंट फ्लो जो चलता है वो बहुत ही अच्छा रहता है. तो माँ कहती हैं टू ऑक्यूपाई वन सेल्फ विद समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ बींग ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ. बींग ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ डिप्रेशन में चले जाना, खाट पे बैठ जाना. और फिर लोग भी होते हैं, कभी किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रखिए. शेयरविंद के शब्द हैं, इट डजेंट हेल्प. और ये तो मैंने देखा है कि आप सहानुभूति करेंगे, वो यही चाह रहा है कि मेरे साथ सहानुभूति हो, परंतु वो उस चीज को और स्ट्रेंदन कर रहा है. आप उसको से बाहर निकालिए. निरोधा तो कभी कभी तो शेरविंद से वो निरोधा लिखते हैं कि मैं लोगों को कई बार मेरा व्यवहार बड़ा हार्श नजर आता है. कहते हाँ नेचुरली तुम कहते सही हो, लेकिन जैसे कहते हो तो मरीज को ये लगता है कि बीमार होना गुनाह है. बट सच ये है कि डिप्रेशन से आप सहानुभूति करते हैं तो आप उसको स्ट्रेंदन करते हैं. तो उसको बल्कि आपको डिस्करेज करना है कि चलो जो भी है कम आउट ऑफ इट, टर्न मूव फॉरवर्ड. इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ वन मे बी बिजी विद समथिंग एल्स और विद अदर्स और सम वर्क और इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रिक्वायरिंग कंसंट्रेशन. इसमें फिजिकल वर्क बहुत यूजफुल होता है. फिजिकल वर्क इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि ये आपके तमस को हटाता है, कंक्रीट है, कंसंट्रेशन आपकी होगी होगी. तो फिजिकल वर्क इज़ वेरी हेल्पफुल, इट्स ऑलमोस्ट ए मस्ट. कई सारी गृहिणियाँ तो इसी तरह से अपने जीवन की समस्याओं को डील कर लेती थी. एंड इट इज स्टिल द सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ डबलिंग अप ऑन वन सेल्फ एंड ब्रूडिंग ओवर वन सेल्फ और कडलिंग वन सेल्फ एज इट वेयर. ये भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं डिप्रेस्ड हूँ कोई आके मुझे कडल करे, कोई आके मुझे अरे ठीक है एक दो मिनट ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत करेंगे तो वो तो आपने एक बहाना दे दिया एक उस चीज को कंटिन्यू करने का. तो कई चीजें हैं जो इट में लुक हार्श बट दे आर थेरेप्यूटिक. भगवान कभी आपके डिप्रेशन को एनकरेज नहीं करते कि ओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ पुत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई एम सॉरी तुम्हें संसार ने बहुत पीड़ा दी. कभी आपने किसी डायलॉग में सुना है कहीं गीता में अगर एक जगह भी श्री अरविंद ये कह रहे, श्री कृष्ण ये कह रहे हो हे अर्जुन मैं समझ पा रहा हूँ बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, शकुनी ने बुरा किया. लोग ये करते हैं, क्या कहते हैं, एक ट्रेडिशनल काउंसलर के पास अगर ये अर्जुन, कई बार लोग कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण वो एक थेरेप्यूटिक सेशन चल रहा है, तो ये नहीं है. वो अगर अर्जुन चला जाता काउंसलर के पास, कहता कि मुझे थोड़ा संन्यास की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो यही कहते कि हाँ अर्जुन तू स्टेप बैक कर ले, थोड़ा थोड़े दिन संन्यास ले ले, वही अच्छा है, संसार बहुत ख़राब है. ऐसे ही लोग हैं. एक्टिविस्ट होता तो और भी दो चार बातें कह देता. और कई बार लोग कहते हैं कि आई विल रिफ्लेक्ट, मुझे पता है कि वो रिफ्लेक्शन का क्या परिणाम होना है, एक महीने बाद दो महीने बाद परिणाम आपका ईगो का ही होना है, वो कोई चीज़ चेंज नहीं करेगी. तो भगवान तो बिल्कुल अलग कह रहे हैं, वो तो प्रारंभिक कहाँ से कर रहे हैं. अगर आप गीता को देखें तो भगवान डांटते हैं अर्जुन को. क्या कहते हैं, कैसे तू कायरों जैसी नपुंसक जैसी बातें कर रहा है, भयभीत हो रहा है. इट्स मतलब देखा जाए तो उनको सिंपथाइज करना चाहिए कि आई नो तू तो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था लेकिन आ गया है, वेरी सैड, लेकिन अब क्या करे तू, उठा गांडी, चला ले शस्त्र, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं ये तेरा छात्र धर्म है, इसको परिपूर्ण करना है। तो देखिए भगवान का तरीका कितना अलग है। अर्जुन भयभीत है, अर्जुन उस समय डिप्रेस्ड है, श्री कृष्ण उसके डिप्रेशन और भय को पोषित नहीं कर रहे। अब गीता का स्टार्ट देखिए, ही शेक्स हिम आउट ऑफ हिज फियर। डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे विषाद योग का तो आश्चर्य होता है, ही लिटरली शेक्स हिम आउट ऑफ हिज फियर। तो यहां एंड इट इज स्टिल द सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ डबलिंग अप ऑन वन सेल्फ एंड ब्रूडिंग ओवर वन सेल्फ और कॉडलिंग वन सेल्फ एज इट वेयर लाइक द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, इफ वन कैन अनफोल्ड वन सेल्फ एंड गेट बिजी विथ समथिंग एल्स, समथिंग विच इज नॉट क्वाइट वन ओन सेल्फ, देन दैट इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट वे ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ। माता जी बताती हैं अपने खुद के बचपन के बारे में। तो एक तरीका होता है जब बच्चों को हम बहुत मॉलिकॉडल करते हैं हर चीज़ के, बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्टिव ओवर ये ना, वो बच्चे अच्छा तो लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है, बूढ़े को भी अच्छा लगता है कोई आकर के आपको सहलाए, लेकिन वो वीक हो जाते हैं आगे, दे कैन नॉट फेस लाइफ। और माँ बताती है, मेरी माँ क्या कहती थी, माँ की फिजिकल मदर, जब वो कभी कोई बात की कोई कंप्लेंट अगर निकली, गेट गोइंग, यू आर नॉट हियर फॉर दीज थिंग्स, तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, छोटी छोटी बातों पे इतना शोर नहीं मचाते हैं। तो माँ कहती हैं शी वॉज लाइक एन आयरन लेडी, पर उन्होंने बहुत बड़ा मुझे लाभ पहुँचाया। वो ध्यान ही नहीं देती थी, कहती जब भी मैं कुछ ऐसा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी मेरे ऊपर इस बात को लेके, वो कहती थी डोंट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, और फिर वो अपनी माँ अपनी दुनिया में जहाँ उनको। तो ये देखिए दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरीका है जहां हम, अब यहां पर ये नहीं कि जब आप उसको आगे बढ़ा रहे हो तो आप प्यार नहीं करती हो, आप बिल्कुल प्यार कर रहे हो, लेकिन आप उस कठिनाई को पोषित नहीं कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो लेकिन डिप्रेशन को नहीं प्रेम कर रहे हो। तो यहां पर उसकी बात है, और ये सबसे सुंदर तरीका है। ये नहीं मतलब है कि आप इनसेंसिटिव या हार्टलेस होते हो, लेकिन आप उस चीज को पोषित नहीं करते हो। देर आर मेनी अदर्स बट दिस इज विद इन एवरी वंस रीच, सो देर वी आर माई चिल्ड्रेन। तो ये दो उपाय, खुद को वाइड करने के और भूलने के। जितना हम स्वयं को भूलेंगे उतना समस्या कम होगी। स्वयं को भूलने के लिए काम में व्यस्त हो जाएं, या कोई भी कुछ अपने साथ, मान लो आपके बुरा हुआ है तो किसी और का भला करने में लग जाओ, या फिजिकल वर्क करो, पेड़ों को पानी दो, पौधों को, निडल वर्क करो। मैंने यहाँ पर ये कई लोगों में ये देखा और बहुत हेल्प करता है, ब्लेसिंग पैकेट बनाना या एम्ब्रॉयडरी का वर्क करना, दे कम आउट और वो अपनी पीड़ा से एकदम दूर रहते हैं, दूर। इनका हमारे डेजरे में, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो सब लोग जिपमार ये वो, मैंने कहा आपको कुछ नहीं है, आप मत चिंता करो, जिपमार जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, क्या क्या टेस्ट नहीं हो गया कि इनको टीबी तो नहीं है, इनको ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, लास्ट में सब दवाइयों का भी उनको जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे हो गए, अंत में वो कैसे ठीक हुई और प्रसन्न रहने लगी। वो ठीक हुई, वो एक उनको वो क्या बोलते हैं, अल्पना बनाना, डिज़ाइन बनाना और उसको कलर भरना उनको इतना पसंद आने लगा, एंड इट इज़ अमेजिंग। ऐसे एक और मैं जानता हूँ, वो अगेन हमारे डिजरे में हैं, वो विकलांग हैं एक्चुअली, जिसको हम कहेंगे ना कि दिव्यांग। अब देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं विकलांग को, दे ओहो बेचारे के साथ देखो कितना बुरा हुआ, अरे अरे उसको, कई बार हम सहायता देने लग जाते हैं। तो ये विकलांग है, कभी आ करके देखना उसको, सी इज सो हैप्पी ऑलवेज। तो वो क्या करती हैं, लेकिन दिमाग ठीक काम करता है, तो बस पांव उनके नीचे का हिस्सा नहीं काम करता है, तो चल नहीं सकती हैं, और बचपन से है। लेकिन वो क्या करती हैं, ऐसे लेट करके पेंटिंग करती रहती हैं, क्या अच्छी ड्राइंग, और आप जा करके देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह इतनी अच्छी ड्राइंग है ना भैया, आप चेहरे पर उनके हंसी देखिए, ऐसे मैंने कैसे देखे फॉरगेट करने के, कल बुखार हो गया तो आज वो गाने सुन रही थी। कौन से गाने सुन रही थी? रोमांटिक गाने। 60 में है वो, 60s है उम्र, और विकलांग है, और ऐसे भी नहीं कि कोई चेहरा मोरा जो भी है, और रोमांटिक गाने। बोले भैया अच्छा है ना, गाने अच्छे लगते हैं। कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी गा लेता हूं। उनकी फिर वो एक और थी यहां पे, जो यहां से नीचे तक, मतलब उनको ऑल थ्रू मैंने बिस्तर में ही पड़े देखा है। एक समय वो डॉक्टर थी और पैरालिसिस हुई, हाथ चलते थे लेकिन धड़ यहां ये सब शून्य, पांव तो चलते नहीं थे। तो वो खाना कैसे खाती थी? यहां छाती पर रख करके प्लेट, जब तक संभव वो नहीं चाहती थी कि कोई हेल्प करे, हालांकि उसके उनके पास फुल टाइम, तो वो छाती के ऊपर प्लेट रखती थी और ये जो उनका फंक्शनल हैंड है उससे लेकर के खाती थी। एंड ऑलवेज जब भी कुछ पूछो कि कोई तकलीफ है, बोलती थी नहीं। कभी कुछ होता था तो कहती थी आज वॉमिटिंग आ रही है, मुझे दवाई दे देना। और पूरे दिन कारवां पे गाने चलते थे उनके, हिंदी पुराने गाने, सुंदर सुंदर गाने, खुशी वाले गाने। कोई एक दिन भी मैंने डिप्रेशन का गाना नहीं सुना। मोहम्मद रफ़ी के गाने, किशोर कुमार के गाने उनको बहुत पसंद थे। इस्माइल अबू, उनका अपना जगत था जो उन्होंने बना लिया था। और मुझे कैसे पता चला दो दिन पहले कि इनका कुछ गड़बड़ है, कि उन्होंने गाने सुनने बंद कर दिए थे। कुछ बोला नहीं उन्होंने कि मुझे कोई तकलीफ है। एंड आफ्टर टू डेज ही लेफ्ट द बॉडी पीसफुली। देखिए हम लोग कितना बढ़ा लेते हैं चीज़ों को, कल्पना कीजिए। ऊपर से लोग भी, अरे इनके साथ भगवान ने क्या कर दिया, बेचारे भगवान को, क्या पता भगवान ने कहा तुम शांति से प्रगति करो, एंड शी प्रोग्रेस्ड। तो ये हम लोग की एक का एक दृष्टिकोण है जो अटका देता है, वो दाग को दिखाता है जो साड़ी के ऊपर है, और बाकी बैकग्राउंड को नहीं दिखाता है। इसीलिए कई बार कि आप जीवन में कठिनाई को फोकस कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। एक बार किसी ने ऐसे ही बात की, कहा कि मैं क्या बताऊं कि मेरे लाइफ में बचपन से लेके आज तक सब लोगों ने मेरे साथ कैसे व्यवहार किया। मैंने कहा बचपन से लेके, मैंने कहा बचपन से लेके किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया? माँ ने दूध नहीं पिलाया, आपका पोषण हुआ ना, किसी ने तो पोषित किया। नहीं नहीं माँ तो अच्छी थी। फिर मैंने कहा और पिताजी? तो पिताजी क्या होते हैं कि पिताजी और माँ का संबंध अच्छा नहीं था। अब ठीक है, बहुत लोग के नहीं संबंध होते हैं, कुछ खींच लेते हैं कुछ नहीं खींचते हैं। कहा लेकिन आपके साथ नहीं, मेरे साथ तो अच्छे थे। अब देखिए कैसे एक दृष्टि, आपके साथ अच्छे थे, उनके आपस में संबंध जैसे भी रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है। फिर और आपके जो भाई बहन हैं, तो अंत में ये पता चलता है कि एक्चुअली बात उतनी बड़ी है नहीं जितना मन उसको बढ़ा देता है, और वो केवल उस कठिनाइयों को देखता है, उन कालखंडों को नहीं देखता है कि कैसे भगवान के वरद हस्त ने आपको आगे ले आए। मैं प्रतीक्षा करता हूँ जब भी ऐसे बात करता हूँ, खासकर जो माँ शेरविंद से जुड़ गए, कि वो एक बार ये बोल देंगे कि लेकिन कोई बात नहीं, इन सब के बावजूद या इन सब के द्वार से गुजरती हुई आज मैं माँ के चरणों में आ गई, तो क्या फर्क पड़ता है। यदि ये सारी चीज़ें मुझे माँ तक ले आई तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि हमको डिफिकल्टी पर फोकस करते नहीं रहना चाहिए। मन से एनालाइज करके ये दूर नहीं होती हैं, अपने को विशालता में खोल देना चाहिए, भगवान के प्रति ऑफर करना चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि अपने अज्ञान में हम चीज़ों को नहीं समझते हैं ना समझ सकते हैं। जब ज्ञान आएगा तो हम चीज़ों को समझेंगे, और तब हम शायद बिल्कुल ही भिन्न रूप से देखेंगे उन्हीं चीज़ों को जिनको आज हम एक तरह से देख रहे हैं। तो ये एक उपाय माता जी के। अब माँ आगे बताती हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इससे जुड़ी हुई है। दिस इज वन मोर थिंग आई हैव नोटिस्ड एंड वन दैट हैज ऑलवेज एस्टॉनिश्ड मी. इट हैज ऑलवेज सीम टू मी क्वाइट नॉर्मल, इजी, ऑलमोस्ट एलिमेंटरी टू एलिमिनेट फ्रॉम वंस कॉन्शियसनेस एंड नेचर थिंग्स वन कंसिडर्स टू बी अनएक्सेप्टेबल. कई चीजें हैं जो हम डिस्कवर करते हैं, पता नहीं होती. जब आपको पता चल गई हैं तो आप उसको एलिमिनेट करते हो, प्रयास करते हो उस दिशा में कम से कम. द मोमेंट वन नोज, द मोमेंट वन सीज देम एज दे आर एंड डजंट वॉन्ट देम एनी लॉन्गर, इट सीम्स टू मी टू बी क्वाइट इनडीड ऑलमोस्ट चाइल्डिशली सिंपल. बट कम से कम आप रिजॉल्व तो लेते हो, प्रयास करते हो कि ये समस्या है, मेरे अंदर है, मैं इसको बाहर करूं. बट आई हैव नोटिस दैट इन मोस्ट केसेस, ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, व्हेन आई टेल समबडी हाउ थिंग्स रियली आर, व्हेन आई गिव देम ए ट्रू पिक्चर ऑफ द कंडीशन ही इज इन और ऑफ द नेचर ऑफ ए मूवमेंट ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स एंड व्हेन आई एक्सप्रेस दैट फोर्सफुली. कई बार माता जी बहुत जोर से कहती थी ताकि वो जो भूत है ना वो निकल जाए. जैसे प्रीतिदास गुप्ता बताती ना, प्लेग्राउंड में वो गई माता जी के पास, हो माँ मुझे बहुत बुखार है, माँ ने डपट के कहा यू हैव नो राइट टू हैव फीवर. वो घबरा गई और बाकी सब लोग भी देख रहे हैं कि माँ ने इसको डांट क्यों दिया. माँ को सिंपथाइज करना चाहिए, अच्छा अच्छा गई थी वहां पैरासिटामॉल ले लिया ना, जाके तुम रेस्ट करो, मेरी प्यारी सी बच्ची. दीदी को भी बुरा लगा, कहती लेकिन मेरा बुखार चला गया उसके बाद, ऐसा गया कि कितने डिकेड्स तक नहीं आया. तो वो एक रॉन्ग मूवमेंट होता है. सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मुझे उनकी लगी जो तारा दी की बुआ होती थी यहाँ पे, वो खुद ही बता रही थी. वो कहती थी कि एक बार मैं बहुत पेन हो रहा था मुझे इस गाल के ऊपर, वहाँ पर कुछ कार्बंकल फोड़ा आ गया था, तो करते करते दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ फोड़ा हो गया था अंदर से, हाँ दांत में. तो गई माता जी के पास चढ़ते चढ़ते, बड़ी पहले किसी ने कहा जाओ माता जी से, बोली मैं नहीं जाऊँगी, वो कर दें ठीक जो करना है. मतलब ये रेजिस्टेंस आ गई, मैं जाऊँगी क्यों. तो फिर गई, बड़े पेन में गई, और जब गई माता जी ने एक थप्पड़ लगाया. पेन, दर्द, जो भी उन्होंने कहा मुझे अब याद नहीं है. उन्होंने हालांकि खुद ही बताई थी मुझे ये कहानी, पर वो थप्पड़ ऐसा थप्पड़ था, वो घबरा गई आसपास वाली सारी, ये क्या हो गया. कहती लेकिन पता नहीं मैं नीचे आई, मेरा सारा पेन खत्म हो गया उसी मोमेंट से. तो माता जी ये बता रही हैं क्योंकि वो फोर्स को एड्रेस कर रही हैं. तो माँ यहाँ ये बता रही हैं कि जब भी मैं किसी को बताती हूँ और थोड़ा जोर देकर बताती हूँ, फोर्सफुली, and when I express that forcefully so that according to me he would immediately have the reaction which seems normal to me, ki bhai mujhe maa samajhte hain, mujhe samajhte hain ki bhai inko mujhse zyada pata hai. To jab maa agar forcefully keh rahi hain to aap bologe acha theek hai mere andar main isko hataun, to maa kehti hai ki hona to ye chahiye, and say oh if it is like that I don't want it anymore. ऐसा होना चाहिए. एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई फाइंड माई सेल्फ बिफोर समथिंग विच ब्रेक्स डाउन एंड टेल्स मी ओ यू आर नॉट वेरी एनकरेजिंग. यदि मैं डांटती हूं तो इंस्टेड ऑफ समझने के कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, वो मुझे वो ब्रेक डाउन कर जाता है व्यक्ति और कहता है कि ओ यू आर नॉट वेरी एनकरेजिंग. तो माता जी की तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, एक से एक, छोट नारायण जी की जो मैंने बात भी की है. आई मस्ट कन्फेस दैट दैट लीव्स मी क्वाइट हेल्पलेस. कहती फिर मैं क्या करूं, समझाने से नहीं समझ रहे हो, जब मैं जोर दे के उस चीज को भगा रही हूं तो तुम नहीं करना चाहते हो, हेल्पलेस. सो टू सी इज नॉट एनफ, टू नो दैट सर्टेन थिंग्स ऑट नॉट टू बी देयर दैट्स नॉट सफिशियंट. It should give you that kind of inner stimulus, a dynamic force which makes you reject the error in such a way that it can't come back again. तो ये सारी चीजें हम सबको अपने अंदर करनी होती हैं, इसको माँ लास्ट में बता रही हैं. But to fall back into an error which one knows to be an error. To make a mistake once again, which one knows to be a mistake. That seems to me fantastic. It is a long time, well, at least relatively by human reckoning. It is a long time I have been on earth, and I have yet not been able to understand that. Maa keh rahi hai, dekhi, ye 56. Maa ki age tab kitni hai? Nearing 80, 78. वो कह रही कि इतने वर्षों में मैंने अब तक जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए. अब देखिए आश्रम में ही 30 साल हो गए हैं आश्रम बने हुए, यानी कितने लोग होंगे जिनके साथ उन्होंने समझाया होगा, कहा होगा. कहती हैं लोग उसकी जगह ये समझते हैं कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या माँ तुम एनकरेजिंग नहीं हो, हमें नहीं कह रही हो. तो माँ बता रही है कि मैंने अब तक ये नहीं पाया. और फिर वो इट सीम्स टू मी इम्पॉसिबल. रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इम्पल्सेस, इनर एंड आउटर फॉल्सहुड, थिंग्स विच आर अगली बेस, सो लॉन्ग एज वन डज देम और हैज देम थ्रू इग्नोरेंस. इग्नोरेंस इज देयर इन द वर्ल्ड, वन अंडरस्टैंड्स, वन इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग दैट, डूइंग देम. इट इज इग्नोरेंस, वन डज नॉट नो दैट इट ऑट टू बी अदरवाइज. But the moment the knowledge is there, the light is there, the moment one has seen the thing as it is, how can one do it again? Then what is one made of? One is made of shreds. One is made of God, goodness knows what, of jelly. ये माँ कई बार word use करती है. क्योंकि तुम किस चीज़ के बने हो? Jelly, jellyfish होती है ना, अपना वो रूप बदल लेती है. तुम बार बार वही चीज को रूप बदल करके उसको कंटिन्यू कर रहे हो. अंत में एक और रेमेडी माँ बताती हैं, और वो कहती हैं बी काम, क्वाइट्यूड. क्वाइट्यूड इज ए वेरी पॉजिटिव स्टेट. देर इज ए पॉजिटिव पीस विच इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ कंफ्लिक्ट, एन एक्टिव पीस, contagious, powerful, which controls and calms, which puts everything in order, organizes. It is of this I am speaking when I tell someone, be calm. I don't mean to say, go and sleep, be inert and passive and don't do anything, far from it. True quietude is a very great force, a very great strength. In fact, one can say, looking at the problem from the other side, that all those who are really strong, powerful, are always very calm. एक क्षण के लिए आप राम जी की हम कहानी, राम जी काम और स्ट्रेंथ दोनों का क्या अद्भुत कॉम्बिनेशन है. एक आध बार वो माता सीता पे कुछ कह देते हैं या किसी को, है उनके एपिसोड्स आते हैं ऐसे, पर बहुत कम. जितना व्यक्ति शांत होता है उतना पावरफुल होता है, और जितना एजिटेटेड होता है, इट इज ओनली द वीक हु आर एजिटेटेड. एज सून एज वन बिकम्स ट्रूली स्ट्रांग, वन इज पीसफुल, काम, क्वाइट, एंड वन हैज द पावर ऑफ एंड्योरेंस टू फेस द एडवर्स वेव्स दैट कम रशिंग फ्रॉम आउटसाइड इन द होप ऑफ डिस्टर्बिंग वन. द ट्रू क्वाइट्यूड इज ऑलवेज ए साइन ऑफ फोर्स. कामनेस बिलोंग्स टू द स्ट्रांग. तो जब भी कोई कठिनाई आती है तो प्रयास क्या करना चाहिए? हम स्ट्रांग बने. स्ट्रांग बनने के लिए काम, क्वाइट्यूड. फिजिकल लेवल पर भी माता जी यही बताती हैं कि शरीर में कोई रोग आ गया, छटपटाना, एजिटेट होना, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कहती हैं एंड दिस इज ट्रू इवन इन द फिजिकल फील्ड. और फिर वो बताती हैं एक बड़ा सुंदर उदाहरण, इसके साथ हम लोग रुकेंगे. आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बट इट इज़ ए फैक्ट दैट वेन दे आर नॉट इन एक्शन दे आर ऑलवेज सो परफेक्टली स्टिल. मैंने देखा हुआ है मसाई मारा जंगल में, वो गाड़ी में हम जाते, जीप में जा रहे हैं, गाड़ी जो भी अंदर से सुरक्षित है, और वो सिंह और उसका पूरा परिवार कितना दूर होगा, वो 6-7 फीट की वहाँ तक वो नज़दीक ले जाते हैं. अब पूरा वो शांत रखे, मानो आप फोटो खींच लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हो या ना हो. अगर वो पूरा परिवार एकजुट होकर कहे अच्छा हमारे उसमें हरे हो, हम देखते, एक तो बहुत ही अद्भुत वो चित्र अंकित हो गया है मेरे मन में. ऐसी उसी जगह की बात है, हम लोग दिन में वो जा रहे थे कार के अंदर, वहाँ बहुत सारे बाघ हैं, तो थोड़ा दूर आगे हमने देखा एक बाघिन जा रही है, और वो चाल में कभी भूल नहीं सकता हूँ, हमारी गाड़ी उसके पीछे पीछे, कितना होगा 10 फीट 12 फीट ऐसे होगा, और उसने बस एक बार पीछे मुड़ के देखा रुक के, कौन है ये विचित्र प्राणी वापस। पर आपके अंदर एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो उनको कांटेक्ट में एक्साइटमेंट एजिटेशन। तो हमारा गाड़ी वाला ये बहुत होशियार था, उसने कह दिया हम लोगों को भय मत लाना, और वो बाघिन जा रही है हम थोड़ा थोड़ा पीछे 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 गाड़ी में सुपर स्लो स्पीड में, कोई फर्क नहीं, वो मैजेस्टिक ब्यूटी, पीछे से वी वर सीइंग हर वॉक। और फिर एक जगह जाके जहाँ उसका जो भी होगा वो उस रास्ते को छोड़ के अंदर चली गई, कोई फर्क नहीं उसको। तो माँ बता रही हैं कि ये पशुओं के अंदर ये चीज़ कितना वो स्ट्रांग है। चूहा अगर देख ले भागेगा, फटाफट भागेगा, दे आर ऑलवेज सो परफेक्टली स्टिल। ए लायन सिटिंग एंड लुकिंग एट यू ऑलवेज सीम्स टू बी टेलिंग यू ओ हाउ फिजेटी यू आर, इट लुक्स एट यू विद सच ए पीसफुल एयर ऑफ विजडम एंड ऑल इट्स पावर एनर्जी फिजिकल स्ट्रेंथ आर देयर गैदर्ड कलेक्टेड कॉन्सेंट्रेटेड एंड विदाउट ए शेड ऑफ एजिटेशन। खड़ा हुआ तो बस अब आप गए। एक माता जी का म्यूजिक है क्वाइट पावर, जब मैं उसको सुनता था मुझे यही लायन की पिक्चर ध्यान में आती थी। रेडी फॉर एक्शन व्हेन द ऑर्डर इज गिवन। आई हैव सीन पीपल, मैनी पीपल हु कुड नॉट सिट स्टिल फॉर हाफ एन आवर विदाउट फिजिटिंग। दे हैड टू मूव ए फुट और ए लेग और एन आर्म और देयर हेड। दे हैड टू स्टर रेस्टलेसली ऑल द टाइम फॉर दे डिड नॉट हैव द पावर और द स्ट्रेंथ टू रिमेन क्वाइट। तो माँ कहती माई चाइल्ड सो इफ आई टेल समवन बी काम आई मे बी टेलिंग हिम ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफन इट इज मेक योर माइंड क्वाइट। मन को शांत करो, डोंट बी रेस्टलेस ऑल द टाइम इन योर हेड। सिर के अंदर विचारों के भंवर जाल या हृदय के अंदर भावनाओं का भंवर जाल, ये एक्चुअली भंवर जाल है, आपकी चेतना को अंदर खींचता जाता है, गिराता जाता है, फिर बाद में आप होल में चले जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, वो भंवर जाल है। डोंट स्टर अप लॉट्स ऑफ आइडियाज, काम योर सेल्फ। जय मां, शांति शांति शांति।